कल बाबा क्या कह रहे थे हम सबको, बेफिक्र बात सहज है बनना या कठिन काम है, बोलो, कहने के लिए सहज या सचमुच सहज। माताएं सोच रही हैं क्या कहें, काम सहज नहीं है, बहुत सारी चिंताएं, किसी को पास्ट की किसी को फ्यूचर की, मनुष्य को लगी ही रहती हैं। बेफिक्र बादशाह बाबा देखना चाहते हैं कौन रह सकते हैं। उत्तर तो बाबा ने दे दिया, जो और सरल कर लें जरा इसको, जो अपने मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित करना जानते हो। बहुत आत्माएं जानती नहीं हैं और उसका कारण है मेरापन, मैं और मेरा, मैं और मेरे को छोड़ना भी हमारी बहुत सूक्ष्म साधना है, छोटी नहीं, एक दिन की नहीं, लंबा काल, सालों साल कोई ध्यान दे कहां मैं आता है कहां मेरापन आता है, उसे अपने को मुक्त करते चलें और रियलाइज करते चलें बाबा क्या है। बाबा हमारे सामने इतना साधारण बन के बैठता है कि हम उसकी शक्तियों को भूल जाते हैं। साकार में बाबा ने कहा था कि बाबा अगर अपने संपूर्ण स्वरूप में तुम्हारे सामने बैठे तो तुम यहाँ बैठ नहीं पाओगे। बाबा अपनी शक्तियों को समेट कर बैठता है, भोलानाथ। बहुतों को लगता है कि बाबा कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी कर दी बाबा ने, कई संकल्प उठ जाते हैं। बाबा को पहचान लें तो दो बातें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छी तरह, वो सुनाने और कहने से समझ में नहीं आती कि बाबा हमारे मन की हर आवाज सुनकर हमें मदद करता है, लेकिन देना हरेक के वश का नहीं है, उसके लिए साधनाएं चाहिए। दूसरा, सब काम ऊपर से हो रहा है, सब काम ऊपर से हो रहा है, उसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल पूरा, जो भी स्थापना का खेल चल रहा है, जो हम आत्माओं का उसके बच्चों का खेल चल रहा है, इसका सब कंट्रोल ऊपर बाबा के हाथ में है। अगर हम बाबा को सचमुच दिल से समर्पित हो जाएं, समर्पित होना मोटा नहीं कि यज्ञ में आके रह गए, कह दिया बाबा मेरा सब कुछ तेरा, बस, समर्पणता की परिभाषा भी बहुत गहन है। कितनी गहन है, बाबा के एक महावाक्य से हम सब सुने। बाबा ने कहा, जिस क्षण तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो उसी क्षण संपूर्ण बन जाते हो। संपूर्ण समर्पणता हमें संपूर्ण बना देती है। कौन हमें साथ दे रहा है, इसकी संपूर्ण स्मृति हमें निश्चिंत कर देती है, बेफिक्र कर देती है। ध्यान क्या रखना है बेफिक्र के साथ, हम बेफिक्र के साथ क्या न बन जाएं, बेपरवाह। कई लोग इसको भी बेफिक्र बादशाह समझ लेते हैं, है छोड़ो अमृत वेले नहीं उठे है वो, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र, मुरली नहीं सुनी, बेफिक्र बादशाह हम तो, किसी को उल्टा सुल्टा बोला पाप किए नो प्रॉब्लम, चलता है सब, बेफिक्र। सेवा की नहीं की कोई बात नहीं। बाबा ने क्या कहा इसके साथ, फिक्र देकर इसके रहस्य को ध्यान में रखना है। फिकर दे दो और क्या ले लो, नशा, नशा ले लो बाबा से। क्या नशा बोलो, कौन से नशे हमें बेफिकर बादशाह बनाएंगे? बोले आप, आपको बोलना है, कौन हमारा साथी है? समस्याएं आएंगी, चिंताएं वाली बातें आएंगी, ये तो नहीं ना नहीं आएंगी, भगवान के बन गए ज्यादा आएंगी, लेकिन कौन मुझे साथ दे रहा है? ये स्थिति हिले नहीं, संशय आ जाता है आत्माओं को, तो साथ का बल समाप्त हो जाता है। और क्या नशा हो? हाँ, ये भी बहुत अच्छा नशा है। और बोलो, है सफलता की गारंटी किसने दी है? फकुर बोलेंगे, बहुत अच्छा है, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है, बहुत अच्छा। और बोलो, कल्याणकारी बाप का हाथ, तो बिल्कुल नशा हो जाए तो यह कल्याण हो ही नहीं सकता। हम कल्प कल्प के विजयी हैं। माताएं बोले, अब मेरा साथी भगवान है। और बोलो, हैं? और बोलो, पढ़ाते हैं हमें, सचमुच पढ़ाते हैं। अच्छा, तो हमें नशा हो जाए, अगर फकुर नहीं तो फिकर होगा। कितनी भी कोशिश करते रहें कि बाबा को दे दिया है हमने, तो फिर भी फिकर होता रहेगा छोटी छोटी बातों का। लेकिन पूरा नशा हो जाए, इस पे हमें ध्यान देना है। तो 6 मास, अब बाबा ने 6 मास के होमवर्क दे दिए हैं, हमें बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं, बेफिकर निश्चिंत जीवन। और निश्चिंत जीवन जीने के बाद और क्या हो? नहीं, निश्चिंत जीवन जीने के बाद क्या हो? हम योगयुक्त। अगर हम निश्चिंत जीवन तो जीते हो, लेकिन योगयुक्त न हो, तो वो भी आधा हो गया। क्यों बाबा हमें निश्चिंत करना चाहता है, क्यों बेफिकर बादशाह बनाना चाहता है? ताकि हम सदा उसके साथ रहकर उसके कार्य कर सकें। इन चीजों पे ध्यान देना है, जिससे हमारा बहुत प्यार हो उसके लिए बोलो, उसका कहना मानना। जैसे मामा का उदाहरण दिया, क्या बाबा का कहना और उनका करना, ब्रह्मा बाबा का भी यही था। शिव बाबा ने जो कुछ कह दिया फाइनल सत्य कह दिया, सब कुछ छोड़ दो, लो आगे क्या होगा ये नहीं, पवित्रता धारण कर लो, हो गई, सबको करा दो, शुरू कर दिया, लोग क्या कहेंगे ये नहीं। माताएं क्या सोचती हैं घरों में? बहुत माताओं की समस्या एक रहती है, सुना दो। माताओं के कुमार ज्ञान में चलते हैं, माताएं कुमारों पे जोर रखती हैं, शादी करनी है, नहीं तो खुद भी ज्ञान छोड़ने लगती हैं। कई कुमार तो ऐसे तेज होते हैं, तुम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। समस्याएं आती रहती है, कुमार आते रहते हैं मेरे पास, मेरी मां 25 साल से ज्ञान में है, अब कहती है तुम शादी करो। ये निश्चय है निश्चय? माताएं बताएं, बिल्कुल पाप की ओर बढ़ रही है वो माता, जो अपने बच्चों को ज्ञान लेने के बाद शादी के लिए जोर लगाए, वो भी भाई उसकी इच्छा हो तो कर लो, वो अलग बात है, लेकिन फोर्स कर रही है। कुमार भाग के सेवा में आ गए आपके पास ही है कि मैं तो नहीं कराऊंगा, मां रो रही है कर लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या करे लड़का, क्या कहे, मर जाओ, मैं तो सिखाता हूँ, कह दो जाओ मुक्त हो जाऊंगा मैं। वो मरती थोड़ा ही है, धमकी देती है। फिर शादी करने के बाद दुखी होती है, बहू ऐसी आ गई नाक में दम कर दिया। अब समस्याएं समस्याएं, समस्याओं का आह्वान किसने किया? ये सब गलत है। माताएं समझदार बनो। इस सब में कुछ नहीं रखा है, मैं तो अकेली हूँ, सबके घर में तो बहुत दहेज आ गया, हमारा घर खाली पड़ा है, सूना है। अरे भगवान आ गया, स्वर्ग दहेज में मिल रहा है, ये भूल गया। चिंता नहीं, भविष्य की चिंता। मैंने ऐसी माताएं देखी जो मेरे पास बैठ के कहती हैं, मेरा लड़का ज्ञान में चल रहा है, जब ये बूढ़ा होगा तो क्या होगा, अकेला। मुझे पूछती हैं क्या करें, शादी करा दो इसकी। मैंने कहा शर्त है कि इसकी जो पत्नी आए वो साथ देगी। दो केस आज मेरे पास आए, ऐसी माताओं ने अपने लड़कों की शादी कराई, दो साल लड़की घर में रही, एक बच्चा हुआ, किसी के साथ भाग गई, रो रहे। अब लड़का कहता तुम रोती रहो, तुम्हें इच्छा थी ना। ये सब बहुत हो रहा है, इसलिए पाप से बचेंगे सभी निश्चिंत। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो वो परेशान हो रहे हो, जब हम बूढ़े हो जाएंगे क्या होगा। लड़का भी 20 साल का है, बूढ़ा होगा 50 साल में, तब तक दुनिया चलेगी उसको विश्वास है। ये भी पता नहीं कि विनाश होगा, ये भी पता नहीं है कि सतयुग आएगा। माताएं बस बाबा बाबा करती हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन अब निश्चिंत होना है। और क्या कहा बाबा ने, कल बहुत अच्छा काम दे दिया मधुवन वालों को भी, हम सबको, सारे ब्राह्मण परिवार को। 6 मास में बाबा क्या देखना चाहते हैं, व्यर्थ से मुक्त, ऐसा संगठन बाबा का बहुत कहना था। आपने ध्यान दिया हो कैसा वातावरण बनाओ सुरेश भाई। देखो हमारे पास आत्माएं आ रही है ना, और अगले 5 साल में बाबा के इन स्थानों का आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा, आत्माएं खींच खींच कर आएंगी देवकुल की। कैसा वातावरण बना दें हम, पावरफुल वातावरण, जो आते ही गेट में प्रवेश करते ही लोग कहें कहां गए। इसके लिए मुझे संकल्प है कि ज्ञान सरोवर में 10 योगी चाहिए। सोच लो जो ज्ञान सरोवर वाले बैठे हैं और जो यहाँ लंबा समय रहना चाहते हैं, केवल 10 योगी जो ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशंस को इतना आकर्षक बना दें कि जो यहाँ आए आते ही उनके टेंशन उतर जाएं, किसी के रोग समाप्त हो जाएं, ये सब होगा, रोग समाप्त हो जाएं, किसी की समस्याएं समाप्त हो जाएं, किसी के चित्त शांत हो जाएं। कर सकते हैं आप में से जो यहाँ बैठे हैं, माताओं में से कोई कर सकती है, 5 माताएं मिल जाएं, 5 भाई, बस सोच लेना। महान योगी जो अपने एक ही लक्ष्य को पकड़ ले, व्यर्थ नहीं। देखो बाबा रोज कह रहे हैं, कल भी कहा, एक एक सेकंड उससे कनेक्शन 21 जन्मों का है। लेकिन कितने लोग हैं हमारे संगठनों में जो समय को इतना महत्व देते हैं, घंटों बैठे हैं तो बात कर रहे हैं। कौन ऐसा करते हैं, जिनके पास भाई बोलेंगे, जिनके पास जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं है, टाइम पास करने वाले, बस सेवा कर ली, अब 4 घंटे खाली है ना तो क्या करें, बैठ के बातें करेंगे 2-4। जिनके पास जीवन का महान लक्ष्य नहीं होता वो अपने समय और संकल्पों को वेस्ट बहुत करते हैं। हम देखते रहते हैं साक्षी होके, भगवान 2-3 साल से कहता ही आ रहा है लेकिन बहुत आत्माओं पे असर नहीं पड़ रहा है। अच्छे योगी बन जाएं हम, व्यर्थ को समाप्त करने वाले। हमारे ज्ञान सरोवर में अगर 500 लोग हैं, उनमें से 10 लोग महान योगी हों, बाकी सब हल्का पुरुषार्थ भी करें, तो वातावरण बहुत पावरफुल हो जाएगा। इन प्रताप पसंद है, शुद्ध वाइब्रेशंस फैलें, वाइब्रेशंस फैलाने हैं। देखो बाबा ने पिछली मुरलियों में भी हमें दुखहर्ता सुखकर्ता का टाइटल दिया, वरदान दिया। हम इसे स्वीकार करें, वरदानों को हमें स्वीकार करना होता है, उसके नशे में रहना होता है, स्मृतियों में रहना होता है, साथ में योग युक्त तो वरदान काम करने लगते हैं। तो व्यर्थ से मुक्त होने का प्लान बनाना है, सबको अपना अपना बनाना है, क्योंकि सबके व्यर्थ अपने अपने होते हैं। किसी को शरीर के कारण व्यर्थ है, बीमारी ऐसी लग गई है, किसी को बच्चों के कारण व्यर्थ है। माताओं का व्यर्थ तो अधिकतर बच्चों के कारण होता है, बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं करते। किसी को काम धंधे बिजनेस के कारण व्यर्थ बहुत है, किसी को अपने संस्कारों के कारण व्यर्थ बहुत है। देखो मैं एक का अनुभव सुनाऊंगा इस बाबा के टर्न का। ऐसे बहुतों के हैं, कैसे व्यर्थ की सूक्ष्म गति आत्माओं को भारी करती है। कोई विदेशी बहन मेरे पास आई कि मुझे बाबा से अच्छे अनुभव नहीं होते, अच्छे अनुभव करना है, क्या करूं। मैंने उसको यहाँ क्लास में भी, उनकी क्लास हुई थी, 5 अभ्यास दिए थे और उसको कहा क्षमा याचना करना, जिन आत्माओं को कष्ट दिया है उनसे क्षमा याचना कर लेना रोज सवेरे आधा मिनट। उसने सब अच्छा किया, लेकिन बाबा के पास बैठी तो अनुभव नहीं हुआ। मेरे पास आई, अनुभव नहीं हुआ मुझे, कोई अनुभव नहीं हुआ। मैंने उसको कहा हमारे भारत के लोग गांव से आए हुए हॉल से बाहर निकल रहे थे, खुशी में बोलते जा रहे, आओ भगवान को देखा आज तो, वो आनंदित थे, और तुम लोग बहुत बुद्धिमान होकर भी क्यों ऐसा हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम वहां क्या सोचती थी बैठकर, तो बताया मैं सोचती थी मेरा बाबा से बहुत प्यार है, बाबा प्यार का रिटर्न दे मुझे, और वैसा नहीं हुआ। अब सोचो, सभी सोचें, संकल्प सुंदर लगता है ना ये सुनने में, बिल्कुल सत्य है, हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, वो हमें हमारे प्यार का रिटर्न दे, लेकिन क्या वो हमें प्यार नहीं करता। हर बार तो मुख से भी कह देता है, चाहे कोई भी बच्चा है, उसका पुरुषार्थ कैसा भी है, उसमें कैसी भी कमजोरी है, लेकिन साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया, महान हो गए ना, सबसे प्यार है। वो कह रहा है मेरा सबसे प्यार है, और सामने वाले कह रहे हैं हमें प्यार ही नहीं कर रहा है, कहां गड़बड़ है। कामनाएं ज्यादा, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा। अब क्या वो चाहती थी आत्मा के ऐसे प्यार मिले भगवान का, ये तो वो जाने। देखो आज वो सन्यासी आए हुए थे, सवेरे अनुभव सुना रहे थे, एक उनमें कोई मठाधीश भी है जो सफेद कपड़ों में था ना, दो और भी अच्छे सन्यासी थे, बुरहानपुर से आया था वो, तो बता रहा कि भाई सब थोड़ा सा अनुभव सुना है, उसको तो बिल्कुल अच्छा हो गया एकदम, थोड़ा सा 3-4 मिनट में उसमें ने अनुभव सुनाया, सब कुछ मुझे अच्छा हुआ। जब बाबा से लोग लाइन में मिलने आने लगे तो लोग मुझे भी कहने लगे तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, बाबा अगर बुलाएगा तो जाऊंगा। कहा बस थोड़ी देर में बाबा ने हम लोगों की ओर देखा और इशारा किया ही नहीं ले आओ। देखिए जरूर कोई आत्मा का बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा प्यार है। हम कह देते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन प्यार किसे कहते हैं सोचो। हमारा बाबा से बहुत प्यार है तो हमें खुश रहना चाहिए या नहीं। ममता बहन क्या कहेंगी अगर कोई खुश नहीं रहता तो क्या ये माना जाएगा कि उसका बाबा से बहुत प्यार है। नारायण भाई सोचने की बात है, हमारा बाबा से बहुत प्यार है, हम मुरली न सुने, हम सवेरे योग न करें, हम उसकी यज्ञ सेवाओं को सफल न करें, तो क्या माना जाएगा उससे हमारा बहुत प्यार है? यज्ञ सेवा चल रही हो और हम न कर रहे हों, हम अपनी जिम्मेदारियों को न निभा रहे हों, हम अलबेले हों, हम छोटी सी बात में थक जाते हों, तो ये प्यार की निशानी नहीं है। भगवान का प्यार माना बहुत अच्छी स्थिति में रहना। हम उससे प्यार करते हैं तो बाबा रोज कह रहा उसकी मान लो। अब सभी को प्लान बनाना है व्यर्थ से मुक्त होने का। सबको संकल्प है या नहीं बोलो? है संकल्प? देखो, हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं, हम उसके अनुभव को जानते हैं ना। व्यर्थ हमारी संपूर्ण शक्तियों को नष्ट करता रहता है, व्यर्थ हमारे मन की दिशा को बदलता रहता है, व्यर्थ हमारी खुशी को छीनता रहता है, व्यर्थ समस्याओं को बढ़ाता रहता है, हमारे संस्कार बदलने नहीं देता है, हमें सफल नहीं होने देता है। ये सब व्यर्थ के कारण है। एक कुमार आज मुझे फोन कर रहा है, भाई मैं एक ये बड़ा कंपटीशन दे रहा हूँ, अब थोड़े ही दिन में एग्जाम है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मुझे निराशा हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूँगा, हायर कंपटीशन है कोई? मैंने उसे पूछा, कंपटीशन तुम्हें देना है? हाँ। स्वेच्छा से दे रहे हो? हाँ। फिर परेशान क्यों हो, एंजॉय क्यों नहीं करते? विचार करें आप, कैसे व्यर्थ मनुष्य को कमजोर करता है। उसको लग रहा बहुत कोर्स है, दिन एक मास रह गया है, बहुत सारा वर्क है, मेरे से नहीं होगा, पहले ही परेशान, निराश, हताश। मैंने उसको फोन पे समझाया, पहले अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरो। जीवन में वो व्यक्ति पहले ही हार गया जिसने अपना आत्मविश्वास खो दिया, वो तो वहीं हार गया। मैंने उसको समझाया, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर तुम्हारा ये हाल रहा, चेंज करो विचारों को, सवेरे क्या सोचो, सारा दिन क्या सोचो। फिर मैंने उसको एक छोटा सा प्लान दिया। तो देखिए, हमारे मन में इस तरह के निराशा के व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए। सभी अपने व्यर्थ संकल्पों की एक लिस्ट बनाएं, कारणों की लिस्ट, ज्यादा नहीं, 5, और भी किसी को कम करना हो 1, कि मुझे इस कारण से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्पों का बड़ा कारण है मैं और मेरा। व्यर्थ संकल्पों का बहुत बड़ा कारण है ज्ञान के बल की कमी। पास्ट के कारण चलते हैं या भविष्य की चिंताओं के कारण चलते हैं? आप 5, 3, 2, 1 अपने कारण ढूंढ लो। किसी को होता है भाई मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे बहुत संकल्प चलते हैं, किसी को होता है कोई मुझे बुरा बोल देता है तो मुझे बहुत संकल्प चलते हैं। लिस्ट देखो अपनी, चेक करो सूक्ष्मता से, और उसमें हमें ज्ञान के बल का प्रयोग करना है। हम यहाँ ज्ञान सरोवर में पूरे 6 मास चलाना चाहते हैं। हम शांतिवन में भी, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है, उसके साथ भी हम चलाएंगे 6 मास। बहुत अच्छा पुरुषार्थ, व्यर्थ से मुक्त, नो इफेक्ट। हम इसे नाम ही देंगे नो इफेक्ट। किसी भी चीज का इफेक्ट होगा जरूर, जल्दी से जल्दी हम उसे समाप्त करें और ऐसी कुछ चीजों पे ध्यान दें जो कारण हैं, बीज हैं व्यर्थ के। कई कई आत्मा इतना कमजोर हो गई हैं कि वो बिना कारण ही व्यर्थ चलाती रहती हैं। संगठन में आ गए, एक दूसरे को देखा है तो भोजन पे बात कर रहे हैं, बहुत व्यर्थ संकल्प चालू। हमने तो सोचा था यहाँ सब योग युक्त भोजन खाते होंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं खा रहा है, हम तो अपने घर में ही अच्छे थे। चालू हो गए, दो दिन रहे, चार दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, भरता गया इंधन माल, व्यर्थ को बढ़ावा मिलता गया। माल बहुत भर जाता है फिर बुद्धि में, गलत माल। बुद्धि स्वच्छ ही नहीं रहती जिसमें बहुत अच्छी धारणा हो और जो व्यर्थ से मुक्त हो। बहुत ऐसे भी होते हैं। कुमार मेरे पास आया, हर ज्ञान में चले थे एक साल पहले, तीन साल से ज्ञान में, क्या नशा था हमें, मैं उस नशे में सेंटर में सेवा शुरू कर दी, अब तो योग खत्म हो गया दो साल में। मैंने उससे पूछा, सेवा कर दी, बहुत अच्छा किया, पर अवगुण बहुत देख लिए होंगे ना आत्माओं के। अब उसे समझ में आया कि यही हो गया है, क्योंकि समीप चले गए जो बड़े भाई पुराने सेवा में थे, जो टीचर दीदियां थी जिनको बहुत अच्छा समझते थे, पहले सोचते थे ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अरे ये तो 25 साल से ज्ञान में, ये तो उड़ते होंगे, अब देखा वो तो उड़ते तो क्या, सोते ही रहते हैं। तो भर गया इधर माल बहुत सारा, ढीला हो गया सब कुछ। बचेंगे इन सब चीजों से, जिसको जीवन में कुछ विशेष करना है उसे दूसरों को नहीं देखना है। हम स्टूडेंट्स हैं, लौकिक पढ़ाई में ध्यान दें आप स्टूडेंट्स पे, क्या फिजिक्स के स्टूडेंट हिस्ट्री की क्लास में जाकर बैठेंगे सोचेंगे कि हिस्ट्री का टीचर क्या पढ़ा रहा, सुन तो है। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट होशियार हैं भी या नहीं, देख तो आए, होगा कभी कोई करता है दुनिया में, एक भी व्यक्ति जो थर्ड क्लास स्टूडेंट फेलियोर वाला भी है ना, वो भी नहीं करता। हम भी सोच लें, दूसरों को देखना हमारा लक्ष्य है ही नहीं, तो बहुत अच्छा ध्यान देंगे, बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे तो मन के बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। एक काम हमें ये करना है, दूसरा काम करना है अपने पास, देखो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 10 ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स रख लें जो हमें व्यर्थ से बचाती रहें। ड्रामा की मुरली हम सब सुन चुके हैं तीन दिन पहले, याद है क्या थी? कितनी सुंदर मुरली थी, हो सके तो आप फिर पढ़ लेना उसको। ड्रामा क्रिएटर को पसंद है, और एक लाइन और जोड़, एक शब्द और जोड़ दे, ड्रामा का हर सीन, नहीं, ड्रामा का हर सीन क्रिएटर को प्रिय है। ड्रामा में हरेक एक्टर का पार्ट क्रिएटर को प्रिय है, इस तरह सोचे आप। उस दिन तो बाबा ने दूसरे शब्द बोल दिए, बनाने वाले को प्रिय है। आज तक हम क्या बोलते हैं, ड्रामा किसी ने बनाया नहीं, बना बनाया है, पर डायरेक्टर कुछ तो करेगा ना, वो डायरेक्टर है तो किसी ने तो शूट किया होगा ना, कभी बताता नहीं, घुमा दिया कि अब घूमते रहो, लेकिन कभी तो कुछ प्लानिंग हुई है मेजर साहब, हुई है या नहीं? तो देखिए, मैं ज्यादा फिल्मों के बारे में नहीं जानता, पर इतना तो पता है कि अगर 10 एक्टर्स को कोई पार्ट देना है तो डायरेक्टर उनका एग्जाम लेगा ना पूरा, भाई ये योग्य है, एक्सप्रेशन वैसे ही, बोल वैसा ही, ये डायलॉग वैसा ही बोलेगा, 10 लोग होंगे उनमें से एक को चुनेगा, भाई ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट। हमें भी जब डायरेक्टर ने पार्ट दिया होगा तो चुना होगा ना, तो उसको प्रिय हो गया, जिसको उसने पाठ दिया और उन सब ने वैसा ही बजाया, तो वो एक्टर्स भी तो उसको प्रिय हो गए। तो बस चिंतन इसी तरह करना है कि ये ड्रामा जब डायरेक्टर को प्रिय है तो हमें भी प्रिय है। हाँ, बहुत अच्छे सब थे, बहुत अच्छे, मुझे भी ये बहुत प्रिय लगा। वैसे भी देख लो आप, रात न हो दिन का महत्व होगा, रात न हो सवेरे के सुंदर समय का महत्व होगा, रात न हो हम सोएंगे कैसे, बिगड़ जाएगा खेल सारा। रात भी अच्छा, दिन भी अच्छी, सुख भी अच्छा, दुख भी अच्छा, ज्ञान भी अच्छा, तो भक्ति भी अच्छी, सबका पार्ट है ना। भक्ति न होती तो, भक्ति न होती तो सुख भी न मिलता। हम भगवान से जुड़े तो रहे, जाने अनजाने हम जुड़े रहे ना, ऊपर भावनाएं बनी रही। संसार में धर्म, अध्यात्म, पुण्य कर्म, धर्म, धर्मात्मा, अच्छे दान पुण्य बना रहा ना, ये सब भी जरूरी था। तो सब कुछ अच्छा, चिंतन करें सभी इस पर, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा बुद्धि। हाँ, बाबा के सब थे, इससे बुद्धि भरपूर हो जाती है, साक्षी भाव आ जाता है। मेरे से कभी लोग प्रश्न पूछा करते थे, आजकल कम पूछते हैं, ज्ञानी ज्यादा पूछते थे, क्या ड्रामा को बदला नहीं जा सकता? बदले तो तब जब उसमें कुछ खराब हो, ठीक है या नहीं? उसमें तो कुछ खराब है ही नहीं, तो ये सीन खराब है इसको निकाल दो, पर खराब है ही नहीं। किस आधार पे बना है ड्रामा? कर्म और फल। आत्मा में जो शक्तियां थी, मूल में देखो आप, परम धाम में थी। एक थोड़ी सी कल्पना करें, हम परम धाम में आत्माएं हैं, बाबा उन्हें नीचे पाठ देना चाहता है। उन आत्माओं में जो शक्तियां होंगी, जो क्वालिटीज होंगी, जिस तरह की योग्यताओं से भरपूर होंगे, उसी तरह का पाठ देगा ना, देगा या नहीं? किसी में गीत गाने की कला है, बाबा ने उसको देखा, तो उसे ये तो नहीं कहेगा ना जाके डांस करो, कहेगा? नहीं कहेगा ना। तो जिसमें जो योग्यताएं थी, जो शक्तियां थी, उस अनुसार पार्ट मिले हैं। इसलिए हम बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, जो मुरलियों में आता रहता है, क्या क्यों कैसे नहीं, कल भी था सर, क्या क्यों कैसे नहीं, खेल बना हुआ है। तो ड्रामा के विशेष चिंतन के द्वारा कोई भी पांच सात बातें सभी ड्रामा की अपने लिए रख लें, तो जो कुछ इस संसार में हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ होगा, उसे हम स्वीकार करते चलें, रिजेक्शन नहीं, स्वीकार करें, चित्त शांत होगा। ऐसे संकल्प रख लें, जो होगा वो सब कल्याणकारी और अच्छा होगा। इसको अपने गहन चिंतन में लाएंगे, बार बार सोचेंगे, तो वो हमारी धारणाएं बन जाएंगी। बहुत अच्छी बाबा ड्रामा की बात कहते हैं, जो मैं सदा आपके सामने रखता हूँ, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, चित्त को शांत कर देती है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। तो हम इस ड्रामा को विशाल दृष्टि से देखेंगे। हमें दिख रहा है ना, बहुत दुख है दुनिया में, कैसा ड्रामा है, पर दुख क्यों है? पाप कर्मों के कारण, विकारों के कारण, बुरे संस्कारों के कारण। तो बाबा इसलिए उन दुखों के बीज को ही नष्ट कराता है, पवित्र हो जाओ, योग बल से पाप को खत्म कर दो, संस्कारों को सुंदर बनाओ, तो ये दुख समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा की इस मुरली से हम सब अपने को तैयार करें कि हमें 6 मास ये पूरा होमवर्क करना है। बहुत सारी बातें कही, याद है ना, वतन में बाबा ने सबसे पहले किन को बुलाया? मधुबन वालों को, आप सबको भी, अब तो आप भी मधुबन में है ना, सबको बुलाया और क्या सुंदर प्रेरणा दी, बोलो। और क्या कहा? कोई भी ऐसा बोल, कर्म, संकल्प न हो जो प्रिय न हो, किसी को भी प्रिय न हो, बाप दादा और दादी क्या हमें भी प्रिय न हो। हम किसी को गलत शब्द बोल दे तो फिर हमें भी खराब लगता है ना, कि हमारे मुख से गलत शब्द निकल गए। जो हमारी कॉन्शियसनेस स्वीकार न करे, जो हमारा अंतर मन स्वीकार न करे, उस पे हम ध्यान दें। बहुत अच्छा, मैं क्लासेज में भी सिखाता हूँ, आप सवेरे उठकर आंख बंद कर लो, बैठ के चिंतन करो, एक संकल्प अपने को दे दो, आज से मैं किसी को कटु वचन नहीं बोलूंगी। बस इसका परिणाम देखो, बहुत सुंदर होगा। अंतर कहां पड़ रहा है कि हम सुन रहे हैं, किसी को दुख न दो, सुन लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे। लेकिन इसको हम अंतर मन में समाएं, सवेरे आप बैठ जाओ शांत, मैंने कहा आंख बंद कर लो, भले ही सोच समझ के कहा मैंने, योग नहीं कर रहे हैं, एक चिंतन, आंख बंद करो, संकल्प करो, मैं सुखदाता की बच्ची हूं, आज से किसी को दुख नहीं दूंगी। जीवन बदलने लगेगा, आप ही बदलने लगेगा। इस तरह इन बातों को हमें अपने अंतर मन में समाना है। इस टेक्निक को सभी यूज करें बहुत अच्छी तरह। बाबा की बहुत इच्छा है सभी क्या बन जाएं, सभी क्या बन जाएं, विजयी रतन, जिसके लिए बाबा ने कहा लड़िया बढ़ा देंगे, फिर कहा 108 की बजाय 1008 कर देंगे, भगवान को कोई मुश्किलात है क्या भाई, आप विजयी बनो, हम उसे 108 की बजाय 1008 कर देंगे। ये भी तो टाइटल है ना भक्ति में, सिर सिद्धि 1008 जगत गुरु, किसी का होता है सिर सिद्धि 108 जगत गुरु, तो किसी का 1008 भी होता है, तो यहीं से हुआ होगा, 1008 आत्माएं पहुंच गई होंगी विजयी, तो बढ़ गई संख्या, क्योंकि लक्ष्य तो बाबा का विजयी बनाना है ना हमें, और हमारे पास भी शक्तियां हैं, हमारे पास भी ज्ञान है, विजय प्राप्त करने के संकल्प को दृढ़ करें, व्यर्थ के वश न हो इसकी सब प्लानिंग करेंगे। कई लोग व्यर्थ के वश होते हैं, बिल्कुल इतना व्यर्थ चलता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें चाहिए मुरलियों का बल, अमृत वेले का बल। अमृत वेले हम आत्मा को बल भरें तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी, और ज्ञान का बल मुरलियों से बढ़ाते चलें। तो बाबा की बहुत अच्छी पालना हमें मिल रही है वरदानों से भी। बाबा जरूर, एक सुंदर शब्द और बोला बाबा ने, बाबा बार बार कह रहा है अचानक होना है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत समय से कह रहा है, क्या उत्तर दिया, तैयार तो हो बच्चे, साकार में बाबा क्या कहा, एक बार पूछा बाबा से, विनाश कर दो ना, आपके तो हाथ में बटन दबा दो, दबा तो दें, पर मनुष्यों के साथ बाबा के बच्चे भी चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे दुखों में, तो बाबा ये नहीं चाहता, मजबूत हो जाएं, दुख हरता बन जाएं, दुखों में परेशान रहने वाले नहीं, श्रेष्ठ स्थिति वाले बन जाएं, तो विनाश तो होना ही है। तो हम लक्ष्य बनाएंगे, इन चीजों पर हम चर्चा करते ही रहेंगे, लेकिन सब अपना अपना प्लान करें, हमें स्वयं को व्यर्थ से बचाते चलना है। अननेसेसरी व्यर्थ भी तो होता है ना, आता रहता है ऐसे, हमारा लेना न देना, हम सोच रहे हैं बैठे बैठे ऐसे ही बिना मतलब सोच रहे हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, पता नहीं देश का क्या होगा, हमारे ये चीफ ऑफ आर्मी ने क्या गड़बड़ कर दिया, पता नहीं क्या होगा इनका, बैठे बैठे जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, भला हमारे सोचने से कुछ होगा, ऐसे अननेसेसरी जो भी अर्थ है ना, सोचते हैं ना सभी लोग, बहुत सोचते रहते, चर्चाएं कर रहे हैं, क्रिकेट में हार गई इंडिया की टीम, परेशान है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, आज हार गए, इसने गलती की, ये फटाफट आउट हो गया, ये पता नहीं कैसे लोग हैं। संकल्प शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बचाएंगे तो विश्व कल्याण में ये काम आएगी। ओम शांति।